लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन स्थित प्रेरिती का आवास की लाइब्रेरी से रविवार 31 जनवरी को देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रेटेली ए सोरेल्ले, बोनजोर्नो,
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
लोडियर्नो ब्रानो एवांजेलिको रकोंता उना जोर्नाता टीपो देल मिनिस्टेरियो दी जेसू।
आज का सुसमाचार पाठ यीशु के मिशन के एक विशिष्ट दिन का वर्णन करता है, विशेषकर एक विश्राम दिवस को। विश्राम एवं प्रार्थना के लिए समर्पित दिन लोग सभागृह गए। कफरनहूम के सभागृह में यीशु ने संहिता का पाठ किया एवं उसकी व्याख्या की। उपस्थित लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभित हो गए। वे इसलिए अचंभित हुए क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा दे रहे थे। इसके अलावा यीशु अपने कार्यों से भी अपने आप को शक्तिशाली दिखाते हैं। वास्तव में सभागृह का एक व्यक्ति उनसे सवाल किए जाने के विपरीत उन्हें ईश्वर का भेजा हुआ कहता है। यीशु बुरी आत्मा को पहचानते हैं और उस व्यक्ति से निकल जाने का आदेश देते हैं और वह उससे बाहर निकलता है। संत पापा ने कहा कि यहाँ यीशु के कार्य की दो विशेषताओं को देख सकते हैं, उपदेश और चंगाई के उपचारात्मक कार्य। वे उपदेश देते और चंगाई प्रदान करते हैं। दोनों ही आयाम संत मार्कुस रचित सुसमाचार में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, किंतु उपदेश को सबसे अधिक जोर दिया गया है। अब दूत निकालना उनके अधिकार की पुष्टि देता है और अपनी शिक्षा में यीशु अधिकार के साथ उपदेश देते हैं। फरीसियों के समान नहीं जो परंपरा और नियमों का पालन करते, बल्कि यीशु अपने ही धर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। संत पापा ने कहा कि फरीसी शब्द 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 और केवल शब्द को दोहराते रहते हैं, जैसा कि महान गायक गाते हैं, जबकि यीशु के शब्दों में अधिकार है। यीशु आधिकारिक है, यह हृदय को स्पर्श करता है। यीशु की शिक्षा में ईश्वर का अधिकार है। वास्तव में एक ही आदेश द्वारा वे व्यक्ति को अशुद्ध आत्मा से मुक्त करते एवं चंगाई प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द वही करते हैं जो वे बोलते हैं, क्योंकि वे निश्चित रूप से एक नबी हैं। संत पापा ने कहा, पर मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि वे निश्चित रूप से एक नबी हैं? मूसा की प्रतिज्ञा की याद करें। मूसा कहता है, मेरे बाद, मेरे बहुत बाद, मेरे समान एक नबी आएगा जो आप लोगों को शिक्षा देगा। मूसा ने यीशु को एक निर्णायक नबी के रूप में प्रस्तुत किया था। यीशु की शिक्षा में ईश्वर के समान अधिकार है जो बोलते और सिर्फ एक आदेश पर बुरी आत्मा के वश से व्यक्ति को मुक्त करते एवं उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वे मानव अधिकार से नहीं बल्कि ईश्वर अधिकार के साथ बोलते हैं, क्योंकि उनमें एक निर्णायक नबी बनने की शक्ति है, अर्थात ईश्वर के पुत्र होने का, जो हम सभी को चंगाई प्रदान करते हैं। दूसरा आयाम है चंगाई दिलाना। ख्रिस्त की शिक्षा मानव जाति के बीच एवं दुनिया में बुराई पर विजय पाने के लिए है। उनके शब्द सीधे शैतान के राज्य की ओर इशारा करते हैं। वे उन्हें संकट में डालते और संसार से विदा होने के लिए बाध्य करते हैं। प्रभु के आदेश के साथ अब दूतग्रस्त व्यक्ति मुक्त होता और नया व्यक्ति बन जाता है। इसके साथ ही यीशु की शिक्षा दुनिया और शैतान के तर्क के विपरीत होने की पुष्टि देता है। उनके शब्द चीजों के गलत क्रम को प्रकट करते हैं। वास्तव में यीशु के पहुंचने पर व्यक्ति में वास करने वाला अवधूत चिल्लाने लगता है, ईसा नासरी, आपसे हमको क्या, क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? ये भाव यीशु और शैतान के बीच बिल्कुल असंबद्धता को दिखाता है। वे दो अलग अलग विमानों में हैं। उनके बीच कोई भी चीज एक समान नहीं है, वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। यीशु का अधिकार जिसने लोगों को प्रभावित किया तथा नबी के रूप में होना जिसने मुक्त किया, वे एक प्रतिज्ञात नबी हैं, ईश्वर के पुत्र हैं जो चंगा करते हैं। तब संत पापा ने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम यीशु के वचनों को सुने जो अधिकार के साथ में हैं। तब संत पापा ने इस वचन का पाठ करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, अपने पॉकेट या बैग में सुसमाचार की एक छोटी प्रति रखें, ताकि आप दिन में इसे पढ़ सकेंगे कि आप यीशु के अधिकार पूर्ण शब्दों को सुन सकें। हम सबकी अपनी समस्याएं हैं, हम सभी ने पाप किया है, हम सभी में आध्यात्मिक अशुद्धियां हैं। हम यीशु से प्रार्थना करें, हे यीशु, आप एक नबी हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जिन्होंने हमें चंगा करने की प्रतिज्ञा की है, हमें चंगाई प्रदान कर। तत्पश्चात संत पापा ने माता मरियम की याद करते हुए कहा, कुंवारी मरियम ने यीशु के शब्दों एवं कार्यों को हमेशा अपने हृदय में रखा, वे हमें भी उन्हें सुनने और उनका अनुसरण करने में मदद दें, कि हम अपने जीवन में उनकी मुक्ति के चिन्हों को महसूस कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने आने वाले विभिन्न अवसरों की याद दिलाई और प्रार्थना करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने यीशु के मंदिर में समर्पण पर्व की याद करते हुए विश्व दादा दादी दिवस की घोषणा की। उन्होने कहा,
Dopodomani, 2 febbraio, celebreremo la festa della presentazione di Gesù al Tempio.
Perso 2 फरवरी को हम मंदिर में यीशु के समर्पण का पर्व मनाएंगे, जब सिमोन और अन्ना दोनों बुजुर्गों ने पौत्र आत्मा से प्रेरित होकर यीशु को मसीह के रूप में पहचाना था। पौत्र आत्मा आज भी बुजुर्गों में प्रज्ञा के विचार एवं शब्द उत्पन्न करते हैं। उनकी आवाज बहुमूल्य है, क्योंकि यह ईश्वर की स्तुति करती तथा लोगों के मूल की रक्षा करती है। वे हमें स्मरण दिलाते हैं कि बुजुर्ग अवस्था एक वरदान है और दादा दादी पीढ़ियों के बीच कड़ी हैं। वे युवाओं के लिए जीवन एवं विश्वास के अनुभवों को हस्तांतरित करते हैं। संत पापा ने कहा कि दादा दादी को बहुधा भुला दिया जाता है और हम जड़ रूपी धरोहर को बनाए रखना तथा हस्तांतरित करना भूल जाते हैं। यही कारण है कि मैंने विश्व दादा दादी दिवस एवं विश्व बुजुर्ग दिवस की घोषणा की है, जिसको हर साल यीशु के नाना नानी संत अन्ना और संत जोकिम के पर्व के नजदीक जुलाई के 4th रविवार को सभी गिरजाघरों में मनाया जाएगा। यह दादा दादी का अपने पोते पोतियों से मिलने का सुंदर अवसर होगा, क्योंकि जैसा कि नबी योएल ने कहा है, दादा दादी अपने पोते पोतियों के सामने स्वप्न देखेंगे और महान इच्छा प्रकट करेंगे। युवा अपने दादा दादी से बल प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे एवं भविष्यवाणी करेंगे। इस तरह 2 फरवरी सचमुच दादा दादी और उनके पोतों के बीच मुलाकात का पर्व होगा। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। संत पापा ने इसकी याद दिलाते हुए कहा, आज हम विश्व कुष्ठ रोग दिवस मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत राउल फोलेरियो ने 60 वर्षों पहले की थी और उनके मानवीय कार्यों से प्रेरित होकर संगठन ने इसे आगे बढ़ाया। मैं उन लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करता हूं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, तथा मिशनरियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन देता हूं जो उनकी सेवा में लगे हैं। महामारी ने पुष्टि दी है कि सबसे नाजुक लोगों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के नेता कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के उपचार हेतु एकजुट होकर प्रयास करेंगे तथा उनके सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात संत पापा ने रोमधम प्रांत के कार्तिक एक्शन दल के लड़के लड़कियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य आपातकाल के बावजूद इस साल भी माता पिता, शिक्षकों और पुरोहितों की सहायता से इस सुंदर पहल का आयोजन किया गया है। वे इस पहल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संत पापा ने उन्हें शाबाशी देते हुए उनके कार्यों को जारी रखने की शुभकामनाएं दी और अंत में संत पापा ने संचार माध्यम से जुड़े सभी विश्वासों का अभिवादन किया तथा अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
जग में वो प्यारा उसकी प्रेमी छाया में है पला जीवन संसार
बोल जीवन दाता की बोल जय 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 बोल जीवन दाता की बोल जय 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 दोष अगर हो दिल में तो देख न पाओगे उसको दोष अगर हो दिल में तो देख न पाओगे उसको पहले मन को शुद्ध करे खोजत जो उसको पहले मन को शुद्ध करे खोजत जो उसको
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 1 फरवरी को वाटिकन में कैथोलिक समाचार सेवा के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। संत पापा ने कैथोलिक समाचार सेवा की स्थापना की शताब्दी वर्ष के अवसर पर उन्हें और कई अन्य पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। संत पापा ने कहा, पिछले 100 वर्षों में कैथोलिक समाचार सेवा ने कलीसिया के मिशन सुसमाचार को घोषित करने और यीशु मसीह में प्रकट ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य देने के अपने मिशन द्वारा अंग्रेजी भाषी दुनिया के लिए एक अमूल्य योगदान दिया है। एक ऐसे युग में जब समाचार को आसानी से हेर फेर किया जा सकता है और गलत सूचना फैल सकती है, आप सच्चाई को इस तरह से जानना चाहते हैं जो आपके आदर्श वाक्य के शब्दों में है, निष्पक्ष, विश्वास योग्य और सूचित। मैं आपके काम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको व्यक्तियों और समुदायों के बीच संवाद और ईमानदार संचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हमें मीडिया की आवश्यकता है जो लोगों, विशेष रूप से युवाओं को बुराई से अच्छाई को अलग करने, तथ्यों को स्पष्ट और निष्पक्ष प्रस्तुति के आधार पर निर्णय लेने में तथा न्याय, सामाजिक समरसता और हमारे आम घर के लिए काम करने के महत्व की सराहना में मदद कर सकें। रोम के धर्माध्यक्ष के साथ समन्वय की भावना जो हमेशा कैथोलिक समाचार सेवा की पहचान रही है, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ सत्य की सेवा के लिए अपने प्रयासों का मार्गदर्शन करना जारी रखें। अपने संदेश के अंत में संत पापा ने वहां उपस्थित कैथोलिक समाचार सेवा के प्रतिनिधियों और उनके सहयोगियों के लिए प्रार्थना का आश्वासन दिया। उधर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन जायद की मेजबानी में अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस और अन्य गण्यमान्य लोगों की भागीदारी में संत पापा फ्रांसिस गुरुवार 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की एक आभासी बैठक में भाग लेंगे। इसी अवसर पर मानव बंधुत्व सम्मान दस्तावेज से प्रेरित मानव बंधुत्व के लिए जायद अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बैठक और पुरस्कार समारोह शुरू होने वाली कई भाषाओं में वाटिकन न्यूज, वाटिकन के मल्टीमीडिया सूचना पोर्टल और वाटिकन मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाएगा। अंतरधार्मिक संवाद हेतु परम धर्मपीठ समिति के अध्यक्ष कार्डिनल मिगवेल ने कहा, यह उत्सव संत पापा फ्रांसिस की उस अपील का जवाब है जिसे संत पापा ने विश्व के लोगों से वर्तमान शांति को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ मुलाकात को बनाए रखने का निमंत्रण दिया था। अक्टूबर 2020 में यह निमंत्रण विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती के साथ और भी ज्वलंत हो गया। ये बैठकें सच्ची सामाजिक मित्रता को प्राप्त करने का एक तरीका है, जैसा कि संत पापा हमसे अपील करते हैं। 4 फरवरी 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की प्रेरितिक यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस अल अजहर काहिरा के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब के साथ मिलकर विश्व शांति और एक साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। कुछ महीने बाद मानव बंधुत्व की उच्च समिति मानव बंधुत्व दस्तावेज की आकांक्षाओं को निरंतर जोड़ने और ठोस कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया, ताकि भाईचारे, एकजुटता, सम्मान और आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। उच्च समिति अबू धाबी के सदियात द्वीप पर एक आराधनालय, एक गिरजाघर और एक मस्जिद के साथ एक इब्राहिम परिवार गृह बनाने की योजना बना रही है। इसने मानव बंधुत्व के लिए जायद अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त करने और विजेताओं को चुनने के लिए एक स्वतंत्र जूरी की स्थापना की, जिसका काम मानव बंधुत्व के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। 2021 का पुरस्कार 4 फरवरी को दिया जाएगा। संत पापा फ्रांसिस ने अंतरधार्मिक संवाद हेतु परम धर्मपीठीय समिति के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के उत्सव में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। उधर पुर्तगाली संसद द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के कानून को मंजूरी देने के बाद पुर्तगाल के धर्माध्यक्षों ने इस पर दुख और नाराजगी व्यक्त की। कलीसिया और कैथोलिक संगठनों द्वारा जोरदार विरोध के बावजूद विधेयक 29 जनवरी को संसद में पारित हुआ। विधेयक के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मरने में सहायता का अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे मरणासन्न रूप से बीमार हैं और स्थायी और असहनीय दर्द से पीड़ित हैं, तब तक कि उन्हें ऐसा निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से फिट माना जाता है। यह प्रक्रिया केवल देश के नागरिकों और कानूनी रूप से वहां के निवासियों के लिए खुली होगी, ताकि बाहर के लोगों को अपना जीवन समाप्त करने के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु पुर्तगाल की यात्रा करने से रोका जा सके। 30 जनवरी को प्रकाशित एक बयान में पुर्तगाली धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के स्थायी परिषद ने दोहराया कि नया कानून संविधान में निहित मानव जीवन की पवित्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसकी मंजूरी उस समय दी गई जब देश कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। इस महामारी ने हमें मानव जीवन के अनमोल मूल्य पर सबक दिया है। इस संदर्भ में मौत को वैध बनाने वाला विधेयक महामारी के सबक को अस्वीकार कर दिया है, जो सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मी अपने असाधारण प्रयासों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र म्यांमार में एक सैन्य तख्तापलट चल रहा है। सोमवार की सुबह सेना की टुकड़ियों ने छापे में कई वरिष्ठ सरकारी नेताओं को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए लोगों में देश की स्टेट काउंसलर और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सांग सू की और राष्ट्रपति विन म्यूंट शामिल है। मिलिट्री टीवी ने घोषणा की कि कमांडर इन चीफ मिन आंग हलिंग को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई है, जिन्होंने एक साल की आपातकाल की घोषणा की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।